ये आज है 28/11/65 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति जब दो बार कहें तो एक बाबा एक दादा कहते हैं, क्योंकि हैं दोनों आत्मा ही। बाबा भी आत्मा है और दादा भी आत्मा है। इस समय इनमें दो आत्मा कहेंगे, किनमें? इनमें शब्द का है तो दो में प्रवेश करने वाली बात कही होगी, माना राम और कृष्ण में इस समय दो आत्माएं कहेंगे। एक तो इनकी आत्मा है ही, दूसरी आत्मा को परमात्मा कहा जाता है, अर्थात परम धाम में निवास करने वाले हैं, इसलिए परमात्मा कहा जाता है। परिति परिधाम में रहने वाला, अब आत्मा और परमात्मा दोनों का संबंध क्या है? एक बाप है और उनके बच्चे हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो जो अंग्रेजों में भी कहते हैं ओ गॉड फादर, तो जरूर पिता हुआ ना। सिर्फ परमात्मा व प्रभु ईश्वर आदि कहने से इतना मजा नहीं आता है, बाप कहने से बाप से सुख मिलता है। बाप तो होता ही है वर्षा देने के लिए। हर एक बाप चाहता है मेरा बच्चा जीवन भर सुखी बना रहे, तो बाप सुख और शांति का वर्षा देता है। लौकिक बाप से तो दुख ही मिलता आया, पारलौकिक बाप है सुख देने वाला, वो तो कहा ही जाता है सदाशिव, तो जरूर सदा सुख देने वाला होगा। फिर दुख कौन देता है? दुख देता है रावण, देह अभिमान वाला। निराकारी है देही, आत्माभिमानी, और देहधारी है सब देह अभिमानी। भक्ति मार्ग में इसीलिए इतना याद करते हैं, जरूर कोई प्राप्ति हुई होगी तो इतना याद करते हैं। गॉडफादर अर्थात वो हमारा पिता है। हम भी कहते हैं हम सब ब्रदर्स हैं, ब्रदरहुड कहते हैं, और ये भारतवासी जब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता है। जब आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कहेंगे। सिखों का धर्म पिता गुरु नानक हो गया, अंग्रेजों का धर्म पिता क्राइस्ट हो गया, मुसलमानों का धर्म पिता मोहम्मद हो गया। तो जब एक बाप ही नहीं है तो भाई भाई की भाषणा कहां से आ जाएगी? उनका कोई आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता है और हमारा आत्मा की तरफ ध्यान जाता है। हम हैं आत्मा, देह की तरफ से बुद्धि हटाए देते हैं तो आत्मा की तरफ ध्यान जाना चाहिए। जब ये कहते हैं कि आत्मा आत्मा भाई भाई बोलो, तो देहभान में चले जाते हैं। ये नहीं समझते हैं कि हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं और एक हमारा पिता है, हम सबका बाप एक है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो भाई भाई कह नहीं सकते, आत्मा ही समझकर कहते हैं भाई भाई। अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठे हो, वहां तो सिर्फ कह देते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, परंतु बाप के सन्मुख थोड़े ही बैठे होते हैं, इसलिए उनको देहभान आता है। जानते हो बाप ने हमको अपना परिचय दिया है, क्योंकि बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई दे भी नहीं सकता। अभी हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। ये आत्मा कहती है कि अभी हमको बाप मिला है, बाप मिला गोया सब कुछ मिला। बाप द्वारा वर्षा मिलता है, बच्चा पैदा हुआ और समझ जाते हैं कि बारिश आया है। बाबा कहने से ही बच्चे का वर्षा सिद्ध हो जाता है। अक्सर करके बच्चियां मामा कहती है। क्या कहा है? हाँ, वो तो कहती है, लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में है याद की बात। यहाँ जो बच्चियों की स्वभाव वाली होंगी वो ब्रह्म ही ब्रह्मा अम्मा ही अम्मा करती रहेंगी, उनको बाप बाप याद नहीं आता। अपना नाम भी धरेंगी जो अम्मा बच्ची, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार, उनको बाप याद ही नहीं आता। और तुम क्या कहेंगे? हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार। तुमको पहले बाप याद आएगा, फिर माँ याद आएगी, क्योंकि बाप पहले बीज बोता है ना, माँ तो बाद में जन्म देती है और पालना करती है। तो तुम माता पिता की बच्ची हो, वो सिर्फ माँ माँ कहती है, कौन बच्ची? तो ब्रह्मा कुमारियां हुई बच्चियां। बच्चियों को बाप से वर्षा नहीं मिलता है। बाप आया है राजाई का वर्षा देने के लिए, वो बाप को याद नहीं करती तो उनको बाप का वर्षा मिलता नहीं। तो अक्सर करके बच्चियां मामा कहती हैं, बच्चा होगा तो बाबा बाबा करता रहता होगा। बच्चे का बाप की तरफ लव जाता है। क्यों? बच्ची की तरफ लव क्यों नहीं जाता? क्योंकि जानता है ये तो दूसरे घर की हो जाएगी, है पराए घर की हो जाएगी। तो जो ब्रह्म ही ब्रह्मा अम्मा ही अम्मा करते रहते हैं वो जरूर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले, पराए घर के होने वाले, द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए बाप का लव किसकी तरफ जाता है? जो बच्चा है, सूर्यवंशी बच्चा है, उस बच्चे की तरफ ये लव जाता है। तो बच्चा होगा तो जरूर ज्योति बिंदु बाप को याद करता होगा, बच्ची होगी तो जरूर ब्रह्मा अर्थात देह अभिमानी को याद करने वाली होगी। माँ में देह भान होता है और बाप बीज प्रदप पिता, पिता कैसा है? बीज बोने वाला, बीज होता है। इसलिए बाप को याद करने वाले वर्षा पाते हैं, माँ को याद करने वाले ज्यादा से ज्यादा पाएंगे तो रानी का वर्षा पाएंगे। रानी को फिर भी याद ही रहना पड़ता है और राजा तो स्वाधीन होता है, किसी के अधीन नहीं होता। तो माँ से तो वर्षा नहीं मिल सकता, बाप से वर्षा मिलता है। बच्ची होगी तो ऐसे नहीं कहेगी वारिस पैदा हुआ। अब यहां तो तुम सब आत्मा भाई भाई हो। बाबा कहते हैं यहां तुम सब क्या हो? भाई भाई हो। यहां माने कहां? यहां एडवांस पार्टी में तुम सब भाई भाई हो, यहां तुम भाई बहन नहीं हो। क्यों? क्यों? क्योंकि तुम सब राजाई का वर्षा लेने वाले हो, तुम में कोई रानी बनने वाला नहीं है और तुम में से कोई पराई घर जाने वाला भी नहीं है। अपने धर्म में पक्के रहेंगे। तो भी यहां तो तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, तुम हरेक बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप की श्रीमत पर अर्थात हरेक अपन को बाप का बच्चा समझे और सबको परिचय भी देते हैं, बाप का ही परिचय देते हैं। बाप का परिचय दे और फिर षष्ठ चक्र का राज समझाओ। बाप से तो स्वर्ग का वर्षा मिलता है, हैं? बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, मिलता है। बाप खुद स्वर्ग में जाता है कि वर्षा ही मिलता है, हैं?
साथ ले जाता है बच्चा,
हैं? वो तो परम धाम में ले जाता है, साथ शांति धाम में साथ ले जाएगा। तो शांति का वर्षा कहो, सुख का वर्षा मिलेगा, स्वर्ग का मिलेगा। स्वर्ग में तो सुख होता है, शांति धाम में सिर्फ शांति होती है, वहां सुख तो बात सुख की तो बात ही नहीं। सुख तो तब भासे जब शरीर हो, शांति धाम में तो शरीर होते ही नहीं। तो फिर बाप से जो स्वर्ग का वर्षा मिलता है वो कैसे मिलता है? वो सुप्रीम सोल बाप ज्योति बिंदु जिस साकार में प्रवेश आता है, प्रवेश होता है, उस साकार के थ्रू सुख का वर्षा देता है। वो साकार स्वर्ग में भी जाता है तो उस साकार के थ्रू जो बच्चे बनते हैं वो स्वर्गवासी बनते हैं। जो साकार के थ्रू नहीं बनते, सिर्फ निराकार को याद करते हैं, वो विदेशी बन जाते हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट हैं तो वो भी परमात्मा गॉडफादर के बच्चे, लेकिन वो साकार को नहीं मानते, इसलिए वो स्वर्ग में नहीं आते। वेद का बाप कहते हैं तुम स्वर्गवासी थे। क्या? कहां के वासी थे? स्वर्ग। स्व माने आत्मा, ग माने गया, आत्मिक स्थिति में गया सो स्वर्ग गया। यहां भी जो जो पहले पहले आत्मिक स्थिति में स्थित होते जावेंगे वो सदा सुख का अनुभव करते जावेंगे। स्व स्थिति, देवान की स्थिति नहीं। जो जो स्व स्थिति में जावेंगे वो सुख का अनुभव जरूर करेंगे। तो बाप कहते हैं तुम स्वर्गवासी थे, फिर नर्कवासी कैसे बने? हैं? जब स्वर्गवासी थे, आत्मिक स्थिति में रहने वाले थे, देवताएं तो सब आत्मिक स्थिति में रहते, उनको आत्मा याद रहती है, देह का भान नहीं होता, तो फिर नर्कवासी कैसे बने? हाँ, नर्कवासी बने जब दूसरे दूसरे धर्म के धर्म पिताएं आए तो उनके संग के रंग से हम नरकवासी बने। माने देह अभिमानियों के संग से हम नरकवासी बनते हैं, और जो सदा सदा शिव है, आत्मिक स्थिति में रहने वाला है, उसके संग के रंग में रहने से हम स्वर्गवासी बनते हैं। 84 जन्मों का चक्कर कैसे खाया है ये डिटेल की बातें हैं। बाकी बाप ने पहचान तो दी है और बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अच्छा, किसको मिला हुआ है? हैं? किसी को स्वर्ग का वर्षा मिला हुआ है? कोई प्रूफ है? अच्छा, शास्त्रों में कोई प्रूफ है? हाँ है। ये जो लक्ष्मी नारायण का नाम आता है शास्त्रों में, उनके लिए कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, और चित्र भी मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के, महात्मा गांधी के चित्र मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं, तो जरूर कभी होकर गए हैं तब तो मूर्तियां मिलती हैं। शिवाजी की मूर्ति मिलती है तो जरूर कभी हुए हैं तब तो मिल रही है। तो लक्ष्मी नारायण का भी चित्र मिलता है, उससे क्या साबित होता है कि जरूर स्वर्ग में थे, स्वर्ग का वर्षा मिला हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण चित्र जो खड़े हुए हैं ये यादगार हैं। इनों को बाप से वर्षा मिला था। लक्ष्मी नारायण को वर्षा किससे मिला था? बाप से, गॉड फादर से। फिर वो कहां गया? वो वर्षा कहां गया? जो वर्षा मिला था स्वर्ग का वो कहां गया? सुख भोगते भोगते आत्मा देह भान में आ गई और वो वर्षा खत्म हो गया। यही चक्कर की बात है। तुमको अब सतयुग का वर्षा मिलता है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म तो भोगना है। अब तुम्हारी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्कर है कि हम कैसे कैसे पुनर्जन्म लेते हैं। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म, और एक जन्म ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है संगम युग का। तो हम 84 जन्म लेते हैं, तुम सबको नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में है। ये 84 जन्मों की डिटेल एक जैसी सबकी बुद्धि में नहीं बैठी हुई है। जो बेसिक नॉलेज में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं ब्रह्मकुमारी विद्यालय में अम्मा की गोदी में पढ़ रहे हैं, उनको तो सिर्फ इतना मालूम है चक्कर के बारे में कि चक्कर घुमाओ माने सतयुग के बाद, त्रेता त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, फिर संगम, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम, भाई यही रटते रहते। उनकी बुद्धि में इतना ही डिटेल होगा, और तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारी बुद्धि में तो बहुत विस्तार हो जाता है, क्योंकि तुमको अनेक 84 जन्मों का पता पहले लगना है, तो तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में है। ये भी निश्चय है कि हमारा अंतिम जन्म है क्या, उन तथाकथित छोटे बच्चों को जो बेसिक नॉलेज में पढ़ रहे हैं प्राइमरी स्कूल में, अम्मा से पढ़ाई पढ़ते हैं, उनको ये बुद्धि में नहीं है क्या कि हमारा आखिरी जन्म, इसका क्या प्रूफ उनको बुद्धि में नहीं है और तुम्हारे बुद्धि में है? आ तुम्हारा आखिरी जन्म, इसका इसका प्रूफ क्या, प्रमाण क्या, और उनकी बुद्धि में नहीं है, इसका प्रमाण क्या? उनकी बुद्धि में नहीं है ये, इसका प्रमाण ये है कि वो दूसरों को तो कहते हैं कि अब दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन खुद बड़े बड़े महल मालियां अटारियां कंक्रीट के बनाते रहते हैं। इससे साबित होता है कि उनको बुद्धि में नहीं है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है और हमारा अंतिम 84वां जन्म, इसलिए वो मृत्युलोक में, क्योंकि उनको निश्चय नहीं है। और तुम संगम युग में हो, संगम युग में नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग में, यह है पति दुनिया 84 जन्मों का चक्कर तुमने लगाया है, अब तुम जावेंगे तो तुम्हारी पिछाड़ी सब चले जावेंगे, तुम पहले पहले जावेंगे शांति धाम, और तुम्हारे पिछाड़ी पिछाड़ी सब जावेंगे, माने तुम ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हो। तुम बच्चे तो बाप से वर्षा पा चुके हो, कैसे कैसे वर्षा पा चुके, तुम्हारी बुद्धि में एडवांस नॉलेज बैठ गई, तो जैसे तुम पूरा वर्षा तुमने पा लिया। पूरा वर्षा क्या होता है? पूरा वर्षा बेसिकली ये है कि बुद्धि में हम ये आ जाए कि हम 84 जन्म लेने वाली आत्मा है, हमारे 84 जन्म पक्के हैं, तो तुम्हारे पूरे 84 जन्म हुए, ऑलराउंड पार्टधारी हुए, तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर तुमको जाकर के राज्य पाना है, जानते हो हम नई दुनिया में राज्य करने आवेंगे, तो इतने सब धर्म आदि वहां होंगे नहीं, जिस दुनिया में हम इस परमधाम से वापस राज्य करने आएंगे उसमें इतने धर्म नहीं होंगे, कौन सा धर्म होगा? एक सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा और सूर्यवंशी ही होगा, दूसरा कोई वंश नहीं होगा। फिर पहले हमको डीटीज में आना है, हम शूद्र कुल के थे और चंद्रवंशी कुल के, तीनों ही वर्षे एक ही बाप से ले रहे हैं, शूद्र कुल के थे फिर ब्राह्मण वंशी बने, ब्राह्मण वंश, चंद्रवंश और सूर्यवंश, ये तीनों वर्षे हमको मिलते हैं, एक ही बाप से हम ये वर्षा ले रहे हैं। सतयुग त्रेता में और कोई धर्म स्थापन करने नहीं आता है, द्वापर का एक ही धर्म रहता है, जो पहला पहला धर्म है इस्लाम धर्म, बाद में फिर और धर्म आते हैं, तो इस्लामी बौद्ध आदि ये पीछे आते हैं, ये हैं बाहर वाले, और तुम हो स्वर्ग के अंदर रहने वाले। पहले पहले हम भारतवासी आते हैं, भारत बहुत प्राचीन देश है, पहले देवी देवताएं ही थे, अभी और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, तो देखो कितनी भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, जैसे जैसे यूरोपियंस हैं तो यूरोप की भाषाएं अलग, अमेरिकन्स हैं उनकी अमेरिकन भाषा अलग, फ्रांस की भाषा अलग, तो वो सब अंग्रेज लोग हैं। चीन को देखो, एक ही बौद्ध धर्म के हैं, परंतु चीन की भाषा और जापान की भाषा और तिब्बत की भाषा अलग अलग हैं, तो सब बौद्ध ही, परंतु वृद्धि हो जाने से फिर भाषाएं अलग अलग हो जाती है, आपस में एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं। माने जितने जितने धर्म बढ़ते जावेंगे, धर्म की धारणाएं बढ़ती जावेंगी, जितनी जितनी भाषाएं बढ़ती जावेंगी, उतना उतना विभेद पैदा होता जाएगा, आपस में झगड़ा पैदा होता जाएगा। वास्तव में भारत जो है उसका कोई दुश्मन नहीं है, ये तो दूसरे धर्म वाले आकर के लड़ाते हैं। क्या इस्लामी आए, बौद्धी आए, क्रिश्चियंस आए, उन्होंने अलग अलग मत मतांतर फैलाए, अलग अलग भाषाएं फैलाई, अलग अलग धर्म की धारणाएं सिखाई, तो आपस में झगड़ा हो जाता है। भारत का दुश्मन कोई नहीं है, क्यों? क्योंकि भारत से तो सारे ही धर्मों का ओरिजिन है, पैदाइश होती है। भारत सब धर्मों का माई बाप है। जैसे मुसलमान लोग आए, फूट डाली, भारत को भी आपस में लड़ाई दिया, नहीं तो इन्हों का लड़ना है नहीं। भारतवासियों का ऐसे कब आपस में लड़ाई नहीं हुई है? न सतयुग में कोई लड़ाई हुई, न त्रेता में कोई लड़ाई हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहां एक धर्म, एक राज्य, एक सत्ता, एक मत, एक भाषा होती है, तो लड़ाई झगड़े का कोई सवाल होता ही नहीं। ये तो विभेद पैदा करने वाले दूसरे दूसरे धर्म जब से आए हैं दुनिया में, तब से लड़ाइयां शुरू हुई। दूसरों ने लड़ाया है, लोभ के कारण लड़ाया है, कोई ने क्रोध के कारण लड़ाया है, ऐसे बहुत मदद भी देते हैं। बंगाल में नवाब राज्य करते थे तो उसको वजीर को रिश्वत दे दी। किसने? अंग्रेज आए ना, तो अंग्रेज ने, अंग्रेजों ने क्या किया कि बंगाल का जो नवाब था उसके वजीर को रिश्वत दे करके अपना काम करा लिया, तो अपने घर की सत्यानाश कर दी लड़ा करके। तो अब ये भी खेल है, भारतवासी ये भूल गए हैं कि हम सब आपस में भाई भाई थे और हम ही विश्व के मालिक थे। 28/11/65 की वाणी का दूसरा पेज, हमको बाप ने राज्य दिया था, अभी सब कुछ भूल गए, कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में भी ये नॉलेज नहीं रहती, ये राज्य हमने कैसे पाया है। सतयुग में ये नॉलेज रहती क्यों नहीं? क्यों भूल जाती है? नहीं, एक्सीडेंट होता है ना किसी का, जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है तो पिछली सब बातें भूल जाती है। तो ऐसे ही ये पुरानी दुनिया जब खलास होती है एटम बमों से, तो इतना भयंकर विनाश होता है कि भारी से भारी महाभारी महाभारत गृह युद्ध के बाद दुनिया का खेल खलासा हो जाता है। इतना बड़ा एक्सीडेंट और कभी होता ही नहीं, तो सब की स्मृति गायब हो जाती है, सब आत्माएं वापस परमधाम जाती हैं, और वापस जब लौटती हैं तो उनको कुछ भी याद नहीं रहता। अभी तुम बच्चे जानते हो हम कैसे राज्य पाए रहे हैं। ये राज्य पाने और राज्य गंवाने की बात बाप ही बैठ समझाते हैं, कैसे गंवाते हैं और कैसे राज्य पाते हैं। एक के संग के रंग में आने से हम राज्य पाते हैं, और अनेकों के संग के रंग में आने से हम राज्य गंवाते हैं। एक की मत पर चलने से हम राज्य पाते हैं, स्वर्ग का वर्षा पाते हैं, और अनेकों की मत पर चलने से हम नरक का वर्षा पाए लेते हैं। अनेक मत माना रावण मत, माना 10 सिर की मत, जैसे कहते हैं ना पंचायती राज्य, राजाओं का राज्य पहले होता था तो उसमें फिर भी सुख शांति थी। अभी तो है प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, ये प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है बेकायदे राज्य, इसमें कभी भी सुख शांति नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान आकर जो राज्य स्थापन करते हैं वो है राजाई। भगवान आकर राजयोग के द्वारा राजाई का वर्षा देता है। अभी तुम बच्चे जान गए हो कि हम राज्य कैसे राज्य पाए रहे। ये बातें भी बाप बैठ समझाते हैं, है बहुत सहज, परंतु मनुष्य बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। बुद्धि को ऐसा ताला लगा हुआ है जो ये भी नहीं जानते कि इन लक्ष्मीनारायण का राज्य कब था। सत्युग के आदि में इन 16 कला संपूर्ण लक्ष्मीनारायण का राज्य था, बाद में उनकी पीढ़ी चली है। जैसे अंग्रेजों में पीढ़ी चली किंग एडवर्ड दी फर्स्ट, किंग एडवर्ड दी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ऐसे ही लक्ष्मीनारायण की सत्युग में 8 गद्दियां चली। पहला जो लक्ष्मीनारायण होता है वो संपन्न होता है, संपूर्ण होता है, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न होता है। उसके बाद जो लक्ष्मीनारायण आते हैं वो कम कलों वाले आते हैं। तो सत्युग आदि में वो कितने सुखी थे, सत्युग की आयु कितनी थी, वो तो कह देते लाखों वर्ष। अच्छा बताओ फिर लाखों वर्ष में गद्दियां कितनी चली होंगी, तो कुछ नहीं बतावेंगे। और वो लाखों वर्ष बताते भी इसीलिए हैं कि हमको हिसाब किताब न बताना पड़े, इसलिए कह देते हैं सृष्टि की आयु लाखों वर्ष है। लाखों वर्ष कह देंगे तो कुछ भी हिसाब किताब बताने की बात आती नहीं। बाप कहते हैं सृष्टि की आयु लाखों वर्ष नहीं है, 2500 वर्ष की हमें हिस्ट्री मिलती है मनुष्यों की, जहां मनुष्यों का राज्य चलता है। और 2500 वर्ष पहले इस भारत में ही देवभूमि थी, देवताओं का राज्य था, हम ही देवता थे, फिर हम ही दूसरे धर्मों के और धर्म पिताओं के संग के रंग में आकर के हम देव से दैत्य बन गए। तो देखो कितनी वृद्धि होती जाती है। सतयुग में उन्हों का राज्य था तो कितने देवी देवताएं महाराजा महारानी बने होंगे, लाखों वर्ष में तो फिर अनगिनत तो हो जाए जिनका हिसाब किताब कोई बता भी नहीं सकता। 5000 वर्ष में भी देखो 550 करोड़ मनुष्यों की आबादी हो गई है, अभी तो 550 करोड़ से भी ऊपर, क्योंकि ये वाणी तो तब की है जब बाबा ने शरीर छोड़ा नहीं था, माउंट आबू में जीवित थे। अभी तो उस टाइम को भी कितना लंबा समय बीत गया, 35-36 साल होने जा रहे हैं। अब हिसाब करो लाखों वर्ष सत्युग के, फिर त्रेता के लाखों वर्ष, और कलयुग के 40,000 वर्ष कह देते हैं। इन बातों में कोई की बुद्धि चलती नहीं है। वास्तव में कोई कोई शास्त्रों में भी हर युग की आयु 1250 वर्ष बताई है, लेकिन उसको 365 से गुणा कर दिया है। किसलिए? इसलिए गुणा कर दिया है कि देवताएं लंबी आयु वाले होते थे और मनुष्यों को छोटी आयु वाला दिखाया गया है, इसलिए उन्होंने गुणा कर दिया, तो आयु लंबी बता दी। बुद्धि चलनी चाहिए ना, इतनी लंबी आयु सृष्टि की है कहां? अरे दिन रात भी होते हैं 24 घंटे में, तो 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। ऐसे ही ये दुनिया में भी सत्युग त्रेता आधा कल्प 2500 वर्ष है सुख, और 2500 वर्ष द्वापर कलयुग नरक दुख। मनुष्य जो धर्म स्थापन करते हैं उससे नरक बनता है, और भगवान जो धर्म स्थापन करते हैं सनातन धर्म उससे स्वर्ग बनता है। तो स्वर्ग और नरक दोनों को मिलाकर के दुनिया का जो ड्यूरेशन है सृष्टि का वो 5000 वर्ष का बनता है। ऐसे तो शास्त्रों में भी ये बात है कि महाभारत ग्रह युद्ध कब हुआ था, शास्त्रों में लिखा है कि आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत लड़ाई हुई थी। उस महाभारत लड़ाई में
यादव कौरव और पांडव तीनों लड़े थे। यादव तो कहा ही उनको जाता है, जो खूब शराब पीते थे, बड़े मांसभक्षी थे,
बड़े मांसभक्षी थे, बड़ी बड़ी महलमाड़ियों अटारियों वाले थे, सुख समृद्धि से भरपूर थे और उनके पेट से मुजल निकले। अब ये शास्त्रों की कथा कहानियां लाक्षण के अर्थों में है। कोई पेट से लोहे के मूसल नहीं निकलते हैं, न मिसाइल्स निकलते हैं, ये तो बुद्ध रूपी पेट है। जिस बुद्ध रूपी पेट में से रूस और अमेरिका ने ये मिसाइल्स रूपी मूसल निकाले, इन मूसलों से ये सारी दुनिया का भी संहार करते हैं और अपने कुल का भी संहार कर देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी दुनिया का संहार हुआ था और अब फिर ये मूसल बना करके इन यादवों ने तैयार किए हुए। पांडव भी थे लेकिन उनकी तादाद बहुत कम थी, उंगलियों पे गिने जाने योग्य उंगलियां तो होती है 5, 5 उंगलियों पे गिने जाने योग्य सिर्फ 5 पांडव थे। बाद में उनकी सच्चाई को परखते हुए उनकी संख्या जब बढ़ी तो वो भी 7 अक्षौणी हो गई। तो इतनी लंबी आयु नहीं है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंध, मेसोपोटामिया, ग्रीस की खुदाइयों में भी जो पुरानी थी पुरानी चीजें मिली हैं वो 5000 वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं मिली। इससे भी साबित होता है कि दुनिया की आयु 5000 वर्ष से ज्यादा नहीं है। लाखों वर्ष आए और चले जाएं ऐसा होता नहीं, कुछ भी समझते नहीं है, ये बेहद का नाटक है। तो नाटक के डायरेक्टर आदि सबका मालूम होना चाहिए। इस नाटक का डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर पर्दे के बाहर आकर के काम करता है या पर्दे के पीछे रहता है? पर्दे के पीछे रहता है, पर्दे के पीछे से सारे इशारे देता है। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का भी डायरेक्टर वो है जो निराकार शिव है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, जो गर्भ से जन्म नहीं लेता, जो अकर्ता और अभोक्ता है। हम आत्माएं भोगी हैं, हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के सुख और दुख भोगती हैं, वो सुख दुख से परे, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इसलिए हमारे अनेक जन्मों को जानता है। जैसे गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूं। अब फिर भगवान आकर के बताए रहे हैं, हम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अर्जुन है। एक अर्जुन को गीता का ज्ञान देने से स्वर्ग नहीं आ सकता, ये भी बात झूठी है कि एक अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अर्जन करने वाले अर्जुन हैं, जिन्होंने अपने भाग्य का अर्जन किया है। शरीर रूपी रथ में वो भगवान निराकार प्रवेश करता है और हमारे इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करता है। स्थूल रथ की बात नहीं है, स्थूल घोड़ों की बात नहीं है। परमात्मा आकर के सच्ची बात बताता है कि मैं द्वापर के अंत में आकर के महाभारी महाभारत युद्ध करा के पापी कलयुग की स्थापना करने के लिए नहीं आता हूं। भगवान आए और पापी कलयुग की स्थापना करके जाए तो उसके आने का फायदा हुआ या नुकसान हुआ? ये तो नुकसान हो गया। अरे भगवान तो जब आता है तो आकर के नरक की दुनिया खलास करता है और स्वर्ग की दुनिया बनाता है। वो आता ही है कलयुग के अंत में और कलयुग का अंत अब हुआ पड़ा है। अनेक धर्मों के रूप में अधर्म इस सृष्टि पर फैले हुए। तो गीता में कहा है, धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतम्। किस लिए आता हूं? सद्धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं और अनेक अधर्मियों का, दुष्कृत्य करने वालों का विनाश करने के लिए आता हूं। तो अब वो आया हुआ है, उस डायरेक्टर के बारे में सबको पता होना चाहिए कि वो कैसे पर्दे के पीछे रहकर सारा कार्य कराए रहा है। शास्त्रों में तो लिखा हुआ है महाभारत में कि भगवान भी गुप्त था और उस भगवान जो पंडा बन करके आया उसके बच्चे पांडव भी गुप्त थे। मुझे आए हुए साधारण मनुष्य तने वाले भगवान को मूढ़मति लोग नहीं पहचान पाते, ऐसे गीता में लिखा है। तो अभी भी वो आया हुआ है, साधारण मनुष्य तन में आता है इसलिए बड़े बड़े लोग पहचान नहीं पाते। दुनिया बड़ों बड़ों को फॉलो करती है, छोटों की बात कोई सुनता नहीं। भगवान आता है, भोलेनाथ कहा जाता है, तो भोले बच्चों को संरक्षण देगा ना। वो आकर के भोलों का बाप बनता है, वो डायरेक्टर है, पर्दे के पीछे रहकर सारा कार्य करा रहा है। रामकृष्ण रूपी जो हीरो हीरोइन है वो रंगमंच पर पार्ट भी बजाए रहे, लेकिन गुप्त रूप में पार्ट बजाए रहे। जैसा शास्त्रों में गायन है कि पांडवों ने गुप्त रह करके गुप्त वास किया लंबे समय तक, तो वो स्थान भी बना हुआ है कांपिल्य नगर। उस कांपिल्य नगर में पांडवों ने लंबे समय तक गुप्त वास किया था, जहां द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, द्रौपदी का जन्म हुआ था, वो समय फिर रिपीट हो रहा है। अभी सब भारतवर्ष से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं पांडवों के रूप में वहां जाकर की इकट्ठी हो रही है, सबका बुद्धियोग वहां इकट्ठा हुआ पड़ा है, लेकिन गुप्त रूप में कार्य चल रहा है। दुनिया नहीं जानती है ये क्या कार्य चल रहा है, तो समय का मालूम होना चाहिए ना। किसको भी पता नहीं है ये कौन सा समय चल रहा है। अभी ये कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था। क्रिश्चियंस लोग अभी भी इस बात की मान्यता देते हैं कि 3000 वर्ष पहले भारत में हेवन था। तो 3000 वर्ष पहले कितना टाइम हुआ, क्राइस्ट को 2000 साल हो गए, और उससे भी 3000 वर्ष पहले, तो दोनों मिला के कितना साल हुआ, 5000 साल। ये 5000 वर्ष का ही तो ड्यूरेशन हुआ। गॉड गॉड इसका राज्य था, लॉर्ड कृष्ण का राज्य था, ऐसे क्रिश्चियंस भी मानते हैं, तो वो राज्य कितने वर्ष चला होगा और कैसे चला होगा वो कुछ भी बतलाते नहीं है। अगर राधे कृष्ण सत्य के प्रिंसिपल्स हैं तो उन्होंने भी कोई द्वारा पद पाया होगा। राधे कृष्ण तो बच्चे का नाम है, बच्चा और बच्ची का, बच्चा बच्ची खुद तो राजाई नहीं प्राप्त कर सकता, जरूर उनको राजाई देने वाले कोई तो हुए होंगे ना माँ बाप, तो उन्होंने भी कोई द्वारा पद पाया होगा। कहते भी हैं, कीर्तन करते हैं तो गाते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, माने कृष्ण की आत्मा ही नारायण बनती है बड़े होकर, और अपने बाप से नारायण का पद प्राप्त करती है। कृष्ण और नारायण, जो आदि नारायण है वो उसका बाप होता है, वो अपना टाइटल नारायण का अपने बच्चे को देता है, तो नारायण की गद्दी चल पड़ती है। अगर कृष्ण ने गीता सुनाई होती तो सोचना चाहिए ना कब सुनाई, सतयुग में सुनाई, त्रेता में सुनाई या द्वापर में सुनाई। द्वापर में सुनाने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, भगवान के आने का जो मकसद है वो ही पूरा नहीं होता। और धर्म पिताएं आते हैं, उनके आने के बाद तो दुनिया ये सारी नरक ही बनती रहती है। आज से 2500 साल पहले क्राइस्ट आए, वो इब्राहिम आए, फिर 2000 साल पहले क्राइस्ट आए, 2500 साल पहले बुद्ध आए, लेकिन दुनिया तो नीचे गिरती गई ना, दुख अशांति तो बढ़ती गई ना। तो मनुष्य गुरुओं या मनुष्य धर्म पिताओं के आने से संसार सुधरता नहीं है। हाँ, समय समय पर उन्होंने इस दुनिया की मरम्मत की है, जैसे कोई मकान पुराना हो जाता है तो बीच बीच में उसकी मरम्मत करते रहते हैं, तो उन्होंने सिर्फ मरम्मत की है, कोई नया सृष्टि रूपी मकान बनाया नहीं है। इस सारी सृष्टि को नया बनाने का काम तो एक परम पिता परमात्मा का ही है, जो अभी कलयुग के अंत में आता है और आकर के एटमिक एनर्जी से इस दुनिया का विनाश शंकर के द्वारा कराता है। इसलिए शंकर के नाम के साथ क्या क्या लगता है टाइटल, हर हर बम बम। तो 50-60 वर्ष पहले न ये ज्ञान था और न भगवान आया हुआ था और न एटमिक एनर्जी का इजाद हुआ था। 60 वर्ष के अंदर ये एटमिक एनर्जी भी तैयार हुई, शंकर का काम भी शुरू हुआ, ब्रह्मा का काम भी शुरू हुआ और विष्णु का कार्य भी होने वाला है। तो अब परमात्मा बाप कहते हैं, ये सब बातें डिटेल में मैं बैठ करके समझाता हूं। क्या जो गायन है कह समझे कवि, और कह समझे रवि, या तो कवि अपने की हुई कविता का सही अर्थ बता सकता था। जो भी महाभारत लिखा, गीता लिखी, रामायण लिखी या देवासुर संग्राम के बारे में जो कुछ भी लिखा या भागवत लिखी गई उसके बारे में असली डिटेल वो कभी बता सकते थे। वो कभी तो अब रहे नहीं जिन्होंने पुराने पुराने शास्त्र लिखे थे, तो अब उनका असली अर्थ बताए कौन। तो कहा जाता है, कहावत है, कह समझे कवि या समझे रवि। रवि माना ज्ञान सूर्य। वो ज्ञान सूर्य ही जब इस सृष्टि पर उतर के आता है तो सारे शास्त्रों का सार सुनाता है, सारे शास्त्रों का अर्थ जो मनुष्य गुरुओं ने बैठ अनर्थ कर दिया है उसका सही अर्थ बताता है। क्या अर्थ कर दिया है? रावण 10 सिर वाला था। बाप बैठ समझाते हैं 10 सिरों की बात नहीं है, 10 मतों की बात है। आज दुनिया में बड़े बड़े 10 धर्म फैले हुए हैं, सारी दुनिया उन 10 धर्म पिताओं के द्वारा फैलाए हुए मत मतांतर पर चल रही है। ये अनेक मत की दुनिया जब चल पड़ती है, अनेक मतों का दुनिया में राज्य होता है तो दुनिया के लोग दुखी हो जाते हैं। अब मैं आया हुआ हूं, असत धर्मों का विनाश करूंगा और एक सत धर्म की स्थापना करूंगा, जो गीता में लिखा है धर्म संस्थापनार्थ है। तो एक मत पर चलना पड़े, जो मुझे एक परमात्मा की मत पर चलेंगे वो स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे, नहीं चलेंगे तो जो एटमिक एनर्जी तैयार हुई पड़ी है उसमें विनाश को पावेंगे और लंबे समय तक शांति धाम में वो आत्माएं पड़ी रहेंगी। वहां तो न सुख होगा न दुख होगा, जैसे मृतवत कोई चीज पड़ी रहती है। तो आत्मा का ड्यूरेशन तो जीवन जीने का है वो कम हो जाएगा। कोई भी आत्मा ये नहीं चाहती कि हमें न सुख मिले न दुख मिले, हम नील में चले जाएं। हर आत्मा चाहती है कि हमारा जीवन भी रहे, हम सुखी रहें, दुखी न हो, अशांत न हो। तो परमात्मा बाप सुख और शांति का वर्षा देने के लिए अब आया हुआ है, डिटेल में सारी बातें बता रहा है। स्कूल में भी पहले तो अलफ और बे पढ़ाते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे बुद्धि विकास को पाती जाती है बड़े बड़े इम्तिहान पास करते हैं। ऐसे यहां भी है, माँ की गोद में जब तक बच्चे पलते हैं, माँ की देखरेख में होते हैं तो बेसिक नॉलेज उनको पढ़ाई जाती है, प्राइमरी स्कूल पास करते हैं। फिर ऊंची नॉलेज में जब ऊंची पढ़ाई पढ़ने जाते हैं तो बी ए एम ए पास करते हैं, रिसर्च स्टूडेंट भी बनते हैं। तो यहां भी ये ईश्वरीय पढ़ाई है, रूहानी नॉलेज है, इसमें भी बड़े बड़े इम्तिहान है। पीढ़ा पिछाड़ी की पढ़ाई और पहले अरबे की पढ़ाई में देखो कितना फर्क है। ब्रह्म कुमारी आश्रम में जो बेसिक नॉलेज पढ़ रहे थे उसमें देखो और अभी एडवांस नॉलेज में देखो कितना फर्क हो गया है, क्योंकि डिटेल हो जाता है। बच्चा वही कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास जी के दोहे कविताएं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, वहां सिर्फ रट्टा लगाता है, रटता है, उसकी गहराई को नहीं समझता। पर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वही करी कबीरदास जी के दोहे, वही तुलसीदास जी के पद, फिर बी एम ए में जाकर के पढ़ता है तो उनकी गहराई को अच्छी तरह से विस्तार से समझता है। तो यहां भी ऐसे ही है, जैसे जितना आगे समझाते थे उससे सहज अभी समझाते, पहले उतना सहज और विस्तार में नॉलेज नहीं थी, अभी सहज भी होता जाता है और विस्तार भी होता जाता है, इससे जास्ती और आगे भी समझेंगे। अभी जितना समझ रहे हैं उससे जास्ती और आगे समझते रहेंगे। क्यों समझते रहेंगे? क्योंकि हर एक्टर रूपी आत्मा जो ज्योतिबिंदु के रूप में ब्रकुटी के मध्य में काम कर रही है उसको अपने अनेक जन्मों का पार्ट याद आना चाहिए, आत्मा रूपी एक्टर है, शरीर रूपी चोले बदल बदल करके 84 के चक्र में पार्ट बजाती है, तो उसको अपने अनेक जन्मों का मालूमात होनी चाहिए ना। कोई एक्टर को एक्टिंग करने के लिए रंगमंच पर चला जाने के लिए कहा जाए और वो अपना पार्ट ही भूल जाए तो उसको तो बेवकूफ कहा जाएगा। तो हम सब भी एक्टर हैं। अब हमको बुद्धू से बुद्धिमान बनाने के लिए बाप आया हुआ है। हर आत्मा के अनेक जन्मों की थ्योरी खुलेगी, हर आत्मा अपने अनेक जन्मों के पार्ट को समझेगी। तो यहां कोई भी आते हैं तो उनको समझाया जाता है, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा पार्टधारी हो, इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर तुम आकर के पार्ट बजाते हो, 84 का चक्र तुम बजाते हो, इस 84 के चक्र में तुमने कैसे कैसे जन्म लिए हैं, ये मनन चिंतन मंथन तुम्हारी बुद्धि में चलना चाहिए। तो पहले तो फार्म भराया जाता है, क्या यहां जो कोई भी आता है तो उनसे फार्म भराया जाता है, उसमें सारी डिटेल उनके बारे में लिखी जाती है, बाप के साथ तुम्हारा क्या संबंध है पूछा जाता है, परमपिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है, तो वो बतावेंगे। क्या बतावेंगे?
माता पिता
कि परमपिता परमात्मा जब कहते जा रहे हो तो हमारा बाप ही है। अच्छा, तुम्हारा बाप है तो बाप से क्या मिलता है?
वर्षा।
वो तो नहीं बतावेंगे क्या वर्षा मिलता है, दुनिया तो नहीं जानती। नहीं जानती है तो उनसे लिखवा लो, हमें पता नहीं क्या वर्षा मिलता है। वो कहेंगे मोक्ष मिलता है। कोई पढ़े लिखे विद्वान आचार्य होंगे तो कहेंगे मोक्ष मिलता है। हैं? हम बाप कहते हैं इस दुनिया से सदाकाल के लिए मोक्ष होता ही नहीं। क्या अगर सदाकाल के लिए इस दुनिया से आत्माएं मुक्त होती चली जाएं तो ये दुनिया खाली हो जाएगी, फिर ये सृष्टि की वृद्धि कैसे हो रही है? दुनिया में आत्माओं की संख्या तो बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। तो मुक्त कहां हो रही है? सदाकाल की मुक्ति वास्तव में कोई की होती नहीं। एक तरफ भगवान के लिए कहते हैं कि कल्प कल्प लगे प्रभु अवतार, हर त्रेता युग में राम का जन्म होता है। अरे भगवान को लगातार जन्म लेना पड़ता है सृष्टि पर आकर के, और आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगी, ये कैसे हो सकता? तो उनसे पूछना पड़े बाप के साथ आप क्या क्या संबंध है। जरूर सबका बाबा हुआ, परंतु इन बातों को समझाने वाले बड़े अच्छी रीति समझे हुए हो, खुद अच्छी रीति समझे हुए होंगे दूसरों को भी समझा सकेंगे। जब तक हस्ती निश्चय हो कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, वो भी एक जन्म का, पता नहीं वो भी चोर डकैत लूट ले जाए, मित्र संबंधी छीन ले, लेकिन ये तो अविनाशी वर्षा बाप आकर के देते। सतयुग त्रेता का वर्षा बाप आकर देते। रामकृष्ण की दुनिया में जो राजाई चलती है उस राज्य का वर्षा बाप आकर के देते हैं, और द्वापर कलयुग का वर्षा अपने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करते हैं। अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो राजा बनते हैं। कहते भी हैं तप कर राज्य राज्य कर नर का, अच्छी तपस्या करते हैं, त्याग और तपस्या में रहते हैं, विश्व का कल्याण करते हैं तो अगले जन्म में राजा बन जाते हैं। राजा बन करके हरेक को अहंकार चढ़ता है, प्रभुता पाए काहे मद नाही। जब अहंकार चढ़ता है तो अहंकार में आकर के दुष्ट कर्म करने लग पड़ते हैं, तो फिर नरक में गिरते हैं। तो ये चक्र चलता रहता है। बाप स्वर्ग रस्ते हैं तो स्वर्ग का ही लंबे समय का वर्षा देते हैं अनेक जन्मों का। ये बातें उन्हों की बुद्धि में बैठेंगी जिन्होंने कल्प पहले निश्चय किया होगा। अगर कल्प पहले निश्चय नहीं किया होगा तो अभी भी बुद्धि में नहीं बैठेंगी। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते, क्या इतना श्रेष्ठ ज्ञान लेते हुए भी अभी भी कई बच्चे सवेरे सवेरे
उठ नहीं सकते?
उठने की प्रैक्टिस ही नहीं है। जब प्रैक्टिस नहीं है तो कितना मेहनत लगती है। 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं तो भी टाइम पर उठते नहीं है। कम से कम 3-4 बजे तो उठो। बाप बेहद का आया हुआ है, बेहद का पुरुषार्थ कराए रहा है, तो बेहद का वर्षा लेने के लिए, अनेक जन्मों की सुख शांति का वर्षा लेने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़े। मेहनत सारे दिन की नहीं उतनी है याद करने की, सिर्फ अमृत वेले की मेहनत बड़ी काम की होती है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इसलिए कहते हैं कि ऋषि मुनि सवेरे को उठ करके ध्यान धरते थे। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि में है तो स्थूल सूर्य जब उगता है तो उससे पहले उठना चाहिए, उस समय अमृत वेला होता है, अमृत बरसता है, वातावरण शुद्ध होता है। लेकिन वास्तव में वो तो एक स्थूल बात है, ये है सूक्ष्म बात। वो ज्ञान सूर्य परमात्मा इस सृष्टि पर जब उगता है तो उसके उगने से पहले, माने उसके संसार में प्रत्यक्ष होने से पहले, जो श्रेष्ठ आत्माएं परमात्मा को पहचान लेती हैं और पहचान कर पुरुषार्थ करती हैं तो उनको पहले वर्षा मिल जाता है। वो आकर के अपना स्वयं परिचय देता है, उसका परिचय कोई दूसरा नहीं दे सकता। तो परमात्मा बाप के जो पहले बच्चे बने होंगे कल्प पूर्व में, वो फिर आकर के वर्षा लेते हैं और वर्षा लेकर के अनेक जन्मों की सुख शांति प्राप्त करते हैं। भक्त लोग भी सवेरे सवेरे उठकर कुछ न कुछ ध्यान धरते हैं, मंत्र जपते हैं, बहुत सवेरे उठते हैं। अभी तुमने समझा है भलो वो भक्ति मार्ग में कितना भी सवेरे उठे, कोई का भी स्मरण करें, शिव का स्मरण करें, हनुमान का करें, परंतु उससे कोई फायदा नहीं। क्योंकि उन्होंने शिव के या हनुमान के बायोग्राफी को जाना ही नहीं है। किसी के जीवन की बायोग्राफी को समझे बगैर ही उसे याद करना, उससे कोई फायदा नहीं। जिसकी हम पूजा करते हैं उसकी जीवन कहानी को तो जानना चाहिए, वो कौन थे, कब हुए, कैसे उन्होंने क्या कार्य किया, वो सारी डिटेल तो जानना चाहिए। ऐसे तो कहते भी हैं भक्ति मार्ग में, पानी पिए छान के गुरु करे जान के। तो जब तक गुरु के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, ऐसे ही दूसरों की देखा दुखन दुनी गुरु कर लिया, पहचाना नहीं, उसको परखा नहीं, तो फायदा क्या होगा। जन्म बाई जन्म गुरु करते रहते हैं, एक गुरु चला जाता है उसका चेला गद्दी पर बैठ जाता है, उसको गुरु बना लेते हैं, दुनिया नीचे गिरती चली जाती है। बाप कहते हैं इन मनुष्य गुरुओं से दुनिया नीचे गिरी है। अब मैं जब आता हूं, मैं तो निराकारी हूं, मैं तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं, मैं तो सिर्फ प्रवेश करता हूं। जैसे गीता में लिखा हुआ है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं, मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं। जैसे भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं, मैं भी प्रवेश तो करता हूं, लेकिन भूत प्रेतों का प्रवेश और मेरे प्रवेश में बहुत अंतर है। मेरा है दिव्य जन्म, दिव्य प्रवेश, मैं कारण शरीर से प्रवेश करता हूं। माने बिंदु रूप आत्मा, स्टार स्वरूप जो आत्मा है वो है कारण, ये शरीर रूपी वृक्ष है कार्य, और शरीर रूपी वृक्ष की जो बीज रूप आत्मा है वो भ्रकुटी में निवास करती है। उसकी यादगार में ऋषि मुनियों ने मस्तक में टीका लगाने का चलन चलाया था, माताएं बिंदी लगाती रही ताकि एक दूसरे को आत्मिक स्मृति के रूप में देखें, देह के रूप में न देखें, देह का आकर्षण न हो। देह का आकर्षण होता है तो देह में विकार पैदा होते हैं, क्योंकि देह है विनाशी और आत्मा है अविनाशी। अविनाशी आत्मा में ध्यान धरने से अविनाशी प्राप्तियां होंगी। तो ज्योतिबिंदु आत्मा है तो ज्योतिबिंदु आत्मा का बाप परमात्मा भी ज्योतिबिंदु होगा। हाथी जैसा बच्चा है तो हाथी का बाप भी हाथी जैसा होगा। सांप लंबा है तो सांप का बाप भी लंबा होगा। तो बिंदु बिंदु आत्माएं, स्टार स्वरूप जो भी हम आत्माएं हैं, जिनके लिए गायन है, क्या गायन है, आसमान में 9,00,000 सितारे हैं, वास्तव में वो तो जड़ सितारे, और हम हैं धरती के चैतन्य सितारे। जब सृष्टि का विनाश होगा उस समय सृष्टि की आबादी सिर्फ 9,00,000 बचेगी। वो ऐसे सितारे हैं चैतन्य जो सारी दुनिया के पूर्वज हैं, 84 जन्मों में से पहले जन्म से आने वाले हैं और आत्माएं कम जन्म लेंगी, पूरे 84 जन्म नहीं लेंगी। लेकिन तुम बच्चे जो परमात्मा के 9 लखा हार बनते हो, वो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो जिनकी बुद्धि में ज्ञान समाया जाता है। तो बहुत सवेरे सवेरे उठना चाहिए, अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए, अपनी आत्मा के बाप परमपिता परमात्मा ज्योतिबिंदु शिव का ध्यान करना चाहिए। ऋषियों महर्षियों ने उस ज्योतिबिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बनाई दिया पूजा करने की सुविधा के लिए। लेकिन बाप कहते हैं, बच्चा कभी बाप की पूजा करता है क्या? बच्चा तो बाप को याद करता है। तो तुम बच्चों को भी मुझे याद करना है, मेरे इतने बड़े रूप शिवलिंग को याद नहीं करना है। क्या याद करना है? निराकारी स्वरूप को याद करना है ज्योतिबिंदु को, और मैं ज्योतिबिंदु जिस साकार स्वरूप में प्रवेश करता हूं, जरूर इस श्रेष्ठ रूपी रंगमंच के जो हीरो हीरोइन रामकृष्ण की आत्माएं, उन्हीं में प्रवेश करूंगा। जो बड़ा होगा तो ऊंची गद्दी लेगा या छोटी गद्दी लेगा? बड़ा होगा तो ऊंची गद्दी लेगा। राजा हमेशा ऊंची गद्दी पर बैठता है, तो इस श्रेष्ठ रूपी रंगमंच का जो डायरेक्टर है, वो भी रामकृष्ण रूपी जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनमें प्रवेश करके संसार में प्रत्यक्ष होता है। और जो धर्म पिताएं आते हैं, वो भी धर्म स्थापना करने वाले पिता हैं, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह वगैरह। लेकिन वो मनुष्य धर्म पिता हैं, वो मानवीय धर्म स्थापन करते हैं, वो स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकते। और मैं गीता ज्ञान सुना करके नर अर्जुन को नारायण जैसा बनाता हूं, और नारी को द्रौपदी को लक्ष्मी जैसा बनाता हूं। तो मेरा कार्य बहुत श्रेष्ठ कार्य है। मैं नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी जैसा बनाने वाला हूं, मनुष्य को देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाता हूं। ये पढ़ाई मनुष्य और कोई मनुष्य नहीं पढ़ाई सकता। वकील बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस खोलते हैं, यूनिवर्सिटी खोलते हैं, लेकिन मैं मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाने के लिए ये आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी खोलता हूं। ये आध्यात्मिक ज्ञान कोई भी दे नहीं सकता। आदि माने आत्मा, आदि माने अंदर, और आत्मिक माने आत्मा के अंदर। माने आत्मा के अंदर क्या है वो कोई मनुष्य मात्र नहीं जान सकता। अर्जुन ने भी कहा कि मैं नहीं जानता, भगवान ने कहा तू नहीं जानता, मैं तेरे को अनेक जन्मों का ज्ञान देता हूं, क्योंकि वो तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। हम मनुष्य आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, इसलिए आदि के जन्मों को और अंत के जन्मों को नहीं जान सकती, आगे के जन्मों को भी नहीं जान सकती और पीछे के जन्मों को भी नहीं जान सकती। परमात्मा आकर के बता रहा है, तरीका बता रहा है। जैसे बीज गणित में हो क्या होता है, तरीका बताए देते हैं, ये बटे ये बटा ये गुणे ये गुणे ये बराबर ये फार्मूला बताते हैं। तो ऐसे ही बाप कहते हैं, मैं ज्ञान के फार्मूले बता रहा हूं। इन ज्ञान के फार्मूलों को अगर जीवन में धारण करेंगे, मनन चिंतन मंथन करेंगे, तो तुम मनुष्य से देवता बनेंगे। लेकिन बीच में तुम्हें फरिश्ता बनना पड़े, माना इस फर्श की दुनिया से रिश्ता तोड़ना पड़े बुद्धियों का। शरीर का रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, रहना है घर ग्रस्त में, लेकिन घर ग्रस्त में रहते हुए भी उपराम स्टेज धारण करके रहना है। कीचड़ जैसे कीचड़ में कमल फूल रहता है कीचड़ में, लेकिन कीचड़ में लिप्त नहीं होता। तो बात बताते हैं कि जिसका ध्यान करना है उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी भी लेनी है। भक्ति करते करते तो दुर्गति को पाई, मनुष्य आत्मा दुर्गति को पाती आई है। अभी वो भक्ति नहीं करनी है। भक्ति माने अंधश्रद्धा, ज्ञान माने अंधश्रद्धा नहीं, श्रद्धा विश्वास। श्रद्धा विश्वास पूर्वक कार्य करें, लेकिन उस कार्य को तह तक पहुंचे, आदि से लेकर अंत तक एक का साथ दें, लेकिन उस एक को पहले पूरा पहचाने। अच्छा, ओम शांति।